समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज, और आज के अंक में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार और वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। और आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी शगुन। नमस्कार शगुन।
नमस्कार फरहत। वेल, गुड डे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम। वेल, दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे विद मी शगुन चोपड़ा, एंड यस with Farhat today. Today she is with me. And let me remind people, like, there's a quote that I would like to share by Ratan Tata. We should never compromise on our values and principles, even if it's the hard way.
Bahut cool.
So let us begin with this motivational quote, maybe. And then we will give you the latest national and international news. We'll also update you with the Metro City stories and then historical information which is related to today. Today it's 28th of December. Let's begin with the headlines.
जी बिल्कुल शगुन, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मन की बात से जुड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 129वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार और प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों से किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा।
Prime Minister Modi will chair the 5th National Conference of Chief Secretaries in New Delhi today. He had also chaired the meeting yesterday. In a social media post, Mr. Modi said that during the conference he had insightful discussions on various issues relating to governance and reforms. So the three-day conference, which began on Friday, is aimed at strengthening centre-state partnership through structured and sustained dialogue on national development priorities. The meeting focuses on the theme Human Capital for Viksit Bharat, covering best practices and strategies for states and union territories to follow.
वहीं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पार्टी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में महात्मा गांधी का नाम केवल चुनावी लाभ के लिए शामिल किया गया था। कल भोपाल में संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बार बार मनरेगा का बजट कम किया। श्री चौहान ने यह भी कहा कि मनरेगा के तहत यूपीए सरकार ने केवल 2,13,000 करोड़ रूपये खर्च किए, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ने 8,53,000 करोड़ रूपये से अधिक खर्च किए। श्री चौहान ने कहा कि नए अधिनियम के तहत पारदर्शी और समय पर भुगतान, संपत्ति सृजन और आजीविका से जुड़े कार्यों के माध्यम से सतत आय सृजन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
The government has notified the operational guidelines for two major shipbuilding initiatives worth 44,700 crore rupees outlay, which are aimed at strengthening India's domestic shipbuilding capacity and improving global competitiveness. The initiatives are the Shipbuilding Financial Assistance Scheme and the Shipbuilding Development Scheme. Ports, Shipping and Waterways Minister Sarbanand Sonowal said that these guidelines create a stable and transparent framework that will revive domestic shipbuilding, boosting forward and backward linkage. President Draupadi Murmu is visiting INS Kadam Naval Base in Karwar in North Karnataka today. She will be flying into Karwar Naval Base from Goa, where Karnataka Governor Thavarchand Gehlot and state ministers will welcome her. After visiting the base, the president will take a sortie aboard a submarine from the Karwar harbour. She will be the second president to undertake a submarine voyage following Dr. APJ Abdul Kalam, who was aboard a naval submarine in 2006 at Vishakhapatnam. So in view of the president's visit and the submarine sortie, the local authorities have implemented security measures. They have imposed a prohibition of fishing activities along an 18-kilometer stretch of the coastline from Karwar to Majali.
वहीं सिक्किम के पाक्योंग जिले में कल माई भारत पहल के तहत कुपुथांग सरकारी पॉलिटेक्निक में फ्लैगशिप योजनाओं पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं। ये एक जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवा, छात्र और समुदाय के सदस्य कार्यक्रम में शामिल हुए और चर्चाओं में भाग लिया।
Let's stretch our boundaries just a little. So polling is underway in Myanmar today for the first of three phase general elections. This is the first vote in 5 years after army overthrew the government of Nobel laureate Aung San Suu Kyi in 2021. So the takeover triggered widespread popular opposition. The military has termed the latest polls as a return to multi-party democracy. Voting will be held in different parts of the country in three phases, with the second on January 11 and the third on January 25. Today, polling will be held in 102 of the country's 330 townships. However, voting has been cancelled in 56 townships. Now, let us provide our listeners with the sports updates. The Board of Control for Cricket in India, BCCI, has announced a 15-member squad for the upcoming ICC Men's Under-19 World Cup, scheduled to be held in Zimbabwe and Namibia from 15th of January to 6th of February next year. The squad will be led by Ayush Mhatare, and while Vihan Malhotra will be the vice-captain. Moreover, Vaibhav Suryavanshi, Aaron George and Abhigyan Kundu are also part of the squad. Five-time champions India have been placed in Group B alongside New Zealand, USA and Bangladesh. India will begin their campaign against the US on 15th of January at the Queen Sports Club in Bulawayo.
और श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और रुख कर लेते हैं महानगरों की खबरों का। तो सबसे पहले शगुन, आपसे जानते हैं कि चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में क्या है खास।
यस, एंड आई एम बिगिनिंग विद चेन्नई फरहत। सो इन रिस्पॉन्स टू द डिटेक्शन ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा H1N1 इन नेबरिंग अलप्पुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कैरीड आउट बर्ड कलिंग ऑपरेशंस यस्टरडे। मोर देन 24,000 बर्ड्स दे वर कल्ड। बिसाइड्स द कलिंग ऑफ बर्ड्स, 584 eggs and 8,380 kilograms of feed were also destroyed. Following the development in Kerala, the Coimbatore District Administration in Tamil Nadu has set up special checkposts on the Tamil Nadu-Kerala border and intensified vehicle checking. Well, nearly 300 poultry farms surrounding the Polity region, they are under continuous monitoring. If there are any symptoms, the public can inform the nearest veterinary hospital doctors. So the chances of its effect in Coimbatore, they are unlikely since there are no backwaters that attract migratory birds. However, the authorities, they are on high alert. Now we will head to Bengaluru. Karnataka Minister for School Education and Literacy, Madhu Bangarappa, yesterday visited the Tibetan colony in Munkod in North Kanara district to be part of the 55th anniversary of Garden Shatse Thosam Norling School. So paying reverence to His Holiness Dalai Lama, the Education Minister greeted the monks, students, teachers and the schools. So he described education as a boundless force that transcends language, religion, state and also national boundaries. He emphasized that peace and progress can sustain education integrated with human values. He informed that moral science will be reintroduced as a compulsory subject from the next academic year. This, he stressed, will strengthen human values, civic responsibilities, health awareness, sensitivity to environment and promote ethical living among the students. He also outlined several welfare initiatives taken by his department, including the midday meal scheme that also provides milk, eggs and ragi malt. The students, he added, are given free textbooks, notebooks, uniforms, shoes and socks. In the everything that you need to go to school, nearly 1.16 crore students studying in government schools are benefiting from this. Now we are heading to Hyderabad. So the overall crime rate has dropped by 15% during the year compared to the last year. But there has been an increase of 6% in cases of crime against women and 27% increase in cases of crime against children. Releasing the annual report yesterday, Hyderabad City Police Commissioner V.C. Sajanar has said the pace of cybercrime incidents has slowed down a bit, with some decline in road accidents as well. He said due to a strong and vigilant police system, criminal gangs from outside are avoiding Hyderabad, fearing arrest while committing crimes in the city. So, narcotics cases, they also witness a sharp rise, while over 3,000 cases have been registered related to smuggling, sale and consumption of drugs and other narcotics there. Cybercrime, it dropped by 6%. Now over to you, Farhat. Let's find out what's happening in Delhi, Mumbai, Kolkata.
जी शगुन, दिल्ली में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वायु गुणवत्ता से जुड़ी खबर से. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ऑपरेशन क्लीन एयर के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में एक बड़ा अभियान चला रहा है. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि निरीक्षण के दौरान 125 में से 34 सड़कों पर धूल बहुत ज्यादा थी, जबकि 58 सड़क खंडों पर मध्यम धूल थी. ऐसे केवल 4 सड़क खंड थे जिनमें कोई भी धूल नहीं पाई गई. आयोग ने बताया कि धूल कम करने और खुले में जलाने से रोकने संबंधी कानून और ग्रैप उपायों का सख्ती से पालन किया जा रहा है. वहीं भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जानकारी दी है कि आज से 31 दिसंबर तक राजधानी के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में अटल स्मृति सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे. इसका उद्देश्य पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से जुड़े प्रसंगों से अवगत कराना है. श्री सचदेवा ने बताया कि पार्टी के सिद्धांतों के निर्माण और पोषण में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा अटल बिहारी वाजपेयी की प्रबल भूमिका रही है. और अब रुख कर लेते हैं मुंबई का. बृहन मुंबई की खबर से शुरुआत करते हैं. नववर्ष की पूर्व संध्या के जश्न से पहले बृहन मुंबई नगर निगम के मुंबई अग्निशमन विभाग ने शहर भर में अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अग्नि सुरक्षा अभियान शुरू किया है. और इस अभियान के तहत होटलों, रेस्टोरेंट, पब, बार और अन्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया है. 22 से 25 दिसंबर के बीच कुल 907 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया. अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन न करने पर 41 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई, जबकि 16 अन्य को नोटिस जारी किए गए. वहीं भारत में कट्टरपंथी विचारधारा के प्रसार के लिए आतंकी संगठन अलकायदा अफगानिस्तान स्थित सर्वरों और नियंत्रण केंद्रों का इस्तेमाल कर रहा है. आतंकी संगठन से संबंधों के आरोप में गिरफ्तार जुबैर हंगरगेकर से महाराष्ट्र आतंकवाद रोधी दस्ते ATS की पूछताछ के दौरान ये तथ्य उजागर हुए. आरोपी से जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से पता चला है कि वह अफगानिस्तान और हांगकांग में पंजीकृत कई ऑनलाइन पहचान का इस्तेमाल कर रहा था. पाकिस्तान, सऊदी अरब, कुवैत और ओमान से जुड़े संपर्कों की भी अभी जांच की जा रही है. और अब आगे बढ़ते हैं, कोलकाता का रुख कर लेते हैं. बात SIR की. पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के सिलसिले में सुनवाई कल पहले दिन सुचारू तरीके से संपन्न हुई. ये सुनवाई 4,600 पर्यवेक्षकों की निगरानी में की गई. अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी. इस बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने निर्णय लिया है कि कुछ ऐसे मतदाताओं को जिन्हें अमान्य के रूप में चिन्हित किया गया है सुनवाई के लिए वहां नहीं बुलाया गया. ये वो मतदाता हैं जिनके नाम या वंश 2002 की मतदाता सूची में स्पष्ट रूप से मौजूद हैं, लेकिन डेटा रूपांतरण के दौरान तकनीकी समस्याओं के कारण उन्हें BLO ऐप में डिजिटल रूप से दर्ज नहीं किया जा सका. महानगरों में अब सबसे पहले मौसम का हाल जान लेते हैं. शगुन, तो सबसे पहले राजधानी दिल्ली के मौसम की बात कर लेते हैं. आज वैसे भी सुबह 5 बजे से काफी कोहरा जो है वो बाहर नजर आ रहा है और ठंड जो है वो बढ़ गई है. और आज न्यूनतम तापमान जो है वो 7 डिग्री रहेगा, यानी ठंड अभी दिन भर रहेगी. और अधिकतम तापमान रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस. वहीं मुंबई की अगर बात की जाए तो वहां पर आसमान साफ रहेगा. और अगर आप दिल्ली से मुंबई का रुख करना चाहते हैं तो जा सकते हैं घूमने के लिए. और न्यूनतम तापमान वहां पर 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा. इसके अलावा कोलकाता में सुबह हल्का कोहरा, बाद में आसमान साफ रहेगा. न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.
इफ आई टॉक अबाउट चेन्नई, इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव फॉग मिस्ट इन द मॉर्निंग एंड पार्टली क्लाउडी स्काई लेटर. द मिनिमम टेम्परेचर देयर इट विल बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 29 डिग्रीज. बेंगलुरु विल हैव मच द सेम वेदर. इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव मिस्ड एंड दिस वुड अकर इन अर्ली मॉर्निंग. द मिनिमम टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू बी 16 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 27 डिग्रीज. हैदराबाद इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव मेनली क्लियर स्काई. द टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 14 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर इन हैदराबाद विल बी अराउंड 29 डिग्री सेल्सियस. फरत
जी शगुन, और आज है 28 दिसंबर 2025. तो आज ही के दिन कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिसका जिक्र हम लोग करेंगे. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 1896 की. कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम का पहली बार गायन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भावनात्मक और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बना. और ये गीत केवल एक रचना नहीं रहा बल्कि देशभक्ति, त्याग और मातृभूमि के प्रति समर्पण का मंत्र बन गया. इसने जनता को भावनात्मक रूप से जोड़ा और स्वतंत्रता संघर्ष को जन आंदोलन में बदलने में अहम भूमिका निभाई.
सुजना सुफला मलय जशी
Well, this happened in the year 1896. Now, if we go back and if we explore the year 1688, well, Mughal Emperor Aurangzeb demolished all temples around Mathura. And in 1921 now, Prince of Wales inaugurated Victoria Memorial Hall at Kolkata.
वहीं बात की जाए अगर 1928 की तो कोलकाता में पहली बार बोलती फिल्म मेलोडी ऑफ लव प्रदर्शित हुई. 1942 में रॉबर्ट सुलेवन पहले पायलट बने जिन्होंने अटलांटिक महासागर के ऊपर 100 बार उड़ानें भरी.
इन 1926 इंपीरियल एयरवेज बिगन इंग्लैंड इंडिया मेल एंड पैसेंजर सर्विस एंड इन 1931 द सेकेंड राउंड ऑफ ब्रिटिश इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑन द पोलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया कोलैप्स्ड इन डिसएग्रीमेंट ओवर डिमांड्स बाय इंडियन नेशनलिस्ट्स फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस. So the British government had seemed willing to grant unlimited dominion status. But Mahatma Gandhi, who had come to the conference to present the demands of all Indian Nationalist Congress, refused to accept anything less than complete independence. In 1932, now Farhad, Britain said, it is to release 28,000 prisoners, including Mahatma Gandhi. In 1951, recognition to Libya by India was accorded. In 1981, Salman Rushdie was awarded the Booker Prize for Midnight's Children. And in 1995, now Farhad, third Indian remote sensing satellite, which was IRS-1C, carrying advanced remote sensing cameras, was launched by Russian Momnaya launch vehicle. Well, this is still in service, IRS-1C.
और बात की जाएगा 1950 की, द पीक डिस्ट्रिक्ट ब्रिटेन का पहला राष्ट्रीय पार्क बना. वहीं 1957 में सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया था आज ही के दिन.
In 1998, India and Sri Lanka signed an agreement to establish a bilateral free trade area after visiting Sri Lankan President Chandrika Kumaratunga and Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. They sorted out the differences that held up negotiations on it in the past. In 2000 now, India and Russia signed their biggest yet defense deal for license production of the Sukhoi 30 MKI fighter jets worth $3 billion.
और अब आइए हम अपने आखिरी सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं जहां हम याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को. तो शगुन, सबसे पहले आपने कार्यक्रम की शुरुआत ही की थी रतन टाटा के जो है विचारों से, तो उन्हीं के बारे में जिक्र कर लेते हैं. टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष कह लीजिए, भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक समूह है जिसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने की और उनके परिवार की पीढ़ियों ने इसका विस्तार किया और इसे दृढ़ बनाया. रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत है जिसने ये सिद्ध कर दिया कि अगर आप में प्रतिभा है तो आप देश में रहकर भी ऐसे शिखर पर पहुंच सकते हैं जहां हर भारतीय आप पर नाज करे.
राइट फरत, विजनरी, फिलैंथ्रोपिक एंड हम्बल, रतन टाटा इंस्पायर्ड मिलियंस. सो वी आर रिमेम्बरिंग इंडियाज ट्रू जेम, अ सोल हु कंटिन्यूज टू इंस्पायर जनरेशंस थ्रू हिज लीडरशिप ऑफ वन ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट बिजनेस हाउसेज एज वेल एज फॉर हिज सिग्निफिकेंट फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज.
द ग्रेटेस्ट प्लेजर आई हैव हैड इज ट्राइंग टू डू समथिंग दैट एवरीबॉडी सेज कुड नॉट बी डन.
Farhad, in his lifetime, he received Padma Vibhushan and Padma Bhushan as well. So his legacy, it transcends the confines of the corporate realm to impact millions of ordinary lives, right?
बिल्कुल शगुन, और 1999 में टाटा सन्स के अध्यक्ष बने रतन टाटा. उनके नेतृत्व में टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा टी, टाटा केमिकल्स और इंडियन होटल्स ने भी काफी प्रगति की. टाटा ग्रुप की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS आज भारत की सबसे बड़ी सूचना तकनीकी कंपनी है और वो फोर्ड फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सदस्य भी रहे और कंपनी के नियमानुसार वो 65 वर्ष की उम्र में जो है रिटायर भी हो गए थे.
राइट.
और अब आगे बढ़ते हैं और एक और उद्योगपति को हम याद कर रहे हैं, धीरज लाल हीराचंद अंबानी को, जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की. उन्होंने मात्र 10वीं तक की शिक्षा ग्रहण की पर अपने दृढ़ संकल्प के बूते उन्होंने स्वयं को विशाल व्यापारिक और औद्योगिक साम्राज्य स्थापित किया. सिर्फ 3 दशकों में ही उन्होंने अपने छोटे से कारोबार को एक विशाल औद्योगिक कंपनी में बदल डाला.
वेल, धीरूभाई अंबानी हैज सेड, थिंक बिग, Think fast, think ahead. Well, ideas, they are no one's monopoly.
बिल्कुल, ये सभी के लिए है कि जब तक कि आप कुछ बड़ा नहीं सोचते हैं तो आप बड़ा नहीं कर पाते हैं. आप छोटा सोचेंगे तो आप उसी तक ही सोच में सीमित रह जाएंगे. तो ऐसे में अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो बड़े बड़े सपने देखना आज से ही शुरू कर दीजिए.
So this was our listeners' Sunday motivational dose. Well, we are also remembering today Freddie King, blues guitarist, singer and songwriter. He is considered one of the 3 kings of the blues guitar and is known for his soulful, powerful voice, which we will hear in just a few seconds, and distinctive guitar playing. Well, Freddie King had a major influence on electric blues music and on many later blues guitarists, and even now his pieces, they are played, and the aspiring guitarists, they learn his pieces, and that's why we are listening to this very legendary song by Freddie King. This is I Am Toe Down.
When I'm toe down, almost level with the ground. When I'm toe down, almost level with the ground. Yes, I feel like it when my baby can't be found. Went to the river to jump in.
How upbeat this song was. And let me tell you about another singer-songwriter and now a pianist, John Legend. Today it's his birthday. He has achieved success in the early 21st century, and the music that he used to play, this was fusion, this he is playing, and he began with it as well, R&B and soul music. So he has won all four major entertainment awards: Emmy, Grammy, Oscar, and Tony Award as well. So let's listen to this legendary composition, very, very well, listened to, and his fans, they enjoy it so much. This is All of Me.
What would I do without your smart mouth, drawing me in and you kicking me out? You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me.
Well, his fans worldwide, they love listening to this song a lot, and the piano that he's been playing here, he is, known for it, and he's a self-taught pianist as well.
और शगुन, आइए अब याद कर लेते हैं हिंदी साहित्य में छायावादी युग के चार स्तंभों में से एक सुमित्रा नंदन पंत को, जिन्होंने आज ही के दिन हमें अलविदा कहा. सुमित्रा नंदन पंत नए युग के प्रवर्तक के रूप में आधुनिक हिंदी साहित्य में उदित हुए. सुमित्रा नंदन पंत ऐसे साहित्यकारों में गिने जाते हैं जिनका प्रकृति चित्रण समकालीन कवियों में सबसे बेहतरीन था. आकर्षक व्यक्तित्व के धनी सुमित्रा नंदन पंत के बारे में साहित्यकार राजेंद्र यादव कहते हैं कि पंत अंग्रेजी के रोमानी कवियों जैसी वेशभूषा में रहकर प्रकृति केंद्रित साहित्य लिखते थे. जन्म के महज 6 घंटे के भीतर उन्होंने अपनी मां को खो दिया. पंत लोगों से बहुत जल्द प्रभावित हो जाते थे. पंत ने महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर उन पर रचनाएं लिखी. हिंदी साहित्य के विलियम वर्ड्सवर्थ कहे जाने वाले इस कवि ने महानायक अमिताभ बच्चन को अमिताभ नाम दिया. पद्मभूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कारों से नवाजे जा चुके पंत की रचनाओं में समाज के यथार्थ के साथ साथ प्रकृति और मनुष्य की सत्ता के बीच टकराव था. हरिवंश राय बच्चन और श्री अरविंदो के साथ उनकी जिंदगी के अच्छे दिन गुजरे, और आधी सदी से भी अधिक लंबे उनके रचनाकाल में आधुनिक हिंदी कविता का एक पूरा युग समा हुआ है. और उनका कहना था कि सिमटा पंख साज की लाली, जा बैठा अब तरु शिखरों पर, ताम्रपण पीपल से शतमुख, झड़ते चंचल स्वर्णिम निर्झर, ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में, सूर्य क्षितिज पर होता ओझल. इसके अलावा उनकी बहुत सारी शगुन कविता रही, भारत माता, सुख दुख, बादल, प्रथम रश्मि, स्त्री, जो काफी लोकप्रिय भी रही. और सुख दुख में तो उनका कहना था कि सुख दुख के मधुर मिलन से ये जीवन हो परिपूर्ण, तो शूल भी फूल है, फूल भी शूल है, जीवन में सुख दुख दोनों हैं, दोनों को स्वीकार करना चाहिए. तो ये बहुत ही अच्छी जो है सीख उन्होंने दी.
वेरी ब्यूटीफुल.
जी बिल्कुल शगुन. और अब आगे बढ़ते हैं, याद कर लेते हैं भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हीरा लाल शास्त्री को. उन्हें देश के प्रसिद्ध राजनेताओं में गिना जाता है. हीरा लाल शास्त्री को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ. वह 30 मार्च 1949 से 5 जनवरी 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे. उनकी अभिलाषा भी थी कि वो किसी गांव में जाकर दीन दलितों की सेवा में अपना जीवन लगाएं. हीरालाल शास्त्री ने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की, और इस विद्यापीठ ने आज नारी शिक्षा की एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्था का भी रूप ग्रहण किया.
Well, today we're also remembering Stanley. Well, Stanley Martin Lieber, the comic book writer, editor, publisher as well. He rose through the ranks of a family-run business. This was called Timely Comics, and this later became the synonymous name Marvel Comics. He was Marvel's primary creative leader for 2 decades and expanded it from a small publishing house division to a multimedia corporation that dominated the comics and film industries, and so many films have been created under his banner then.
और श्रोताओं, आज ही के दिन जन्म हुआ था सादगी से भरपूर ऐसे अभिनेता का जिन्होंने 1973 में आई फिल्म गर्म हवा से हिंदी सिनेमा में कदम रखने जो है रखा और फिर ऐसी प्रसिद्धि पाई कि मुड़कर पीछे नहीं देखा. तो एक काम करते हैं, जिन इससे पहले कि हम उनका नाम लें, क्यों ना उनका ये डायलॉग सुन लेते हैं.
अब सुनो, जहां तुम्हारा जी चाहे जाओ, जो जी चाहे करो, जिस तरह जिंदगी जीनी है जियो. बेटा एक बात याद रखना, जिंदगी में चाहे जो हो जाए, कुछ भी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं.
बिल्कुल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ये कहना था फारूक शेख का. बहुत ही उम्दा पर्सनालिटी और महान फिल्मकार सत्यजीत रे के साथ शतरंज के खिलाड़ी की थी उन्होंने.
वेल यस, फारूक शेख, अ नेम दैट रेजोनेट्स विद ग्रेस, चार्म एंड आल्सो वर्सेटिलिटीज. This remains one of the most cherished figures. His remains one of the most cherished figures in Indian cinema.
बिल्कुल, और शगुन और सबसे ज्यादा फिल्में जो उन्होंने की वो की थी दीप्ति नवल के साथ. इसके अलावा बहुत प्यारी प्यारी फिल्में उन्होंने की, चश्मे बद्दूर, साथ साथ तथा रंग बिरंगी. तो क्यों ना फिल्म साथ साथ से ये प्यारा सा गीत सुन लेते हैं.
तुमको देखा तो ये ख्याल
Well, yes, Farhat, with his impeccable acting skills and a natural ease on screen, which we actually heard in his dialogue as well, this and the dialogue was from Ye Jawani Hai Deewani. He captured hearts with his roles in both films and television. So the intense and captivating performance in Shatranj Ke Khiladi. So Farooq Sheikh's ability to effortlessly switch between genres made him a true gem in the industry.
Bilkul Shagun, aur film Bazaar mein bhi Farooq ka kirdaar logo ne kaafi pasand kiya. Toh kyun na is film se bhi ye pyara sa geet sun lete hain.
Phir chidi raat baat phoolon ke
थी 1982 में, जिसमें स्मिता पाटिल, नसरुद्दीन शाह और सुप्रिया पाठक ने अभिनय किया फारूक शेख के साथ, और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई.
एंड यस फरत, हिज पावरफुल प्रेजेंस ऑन स्क्रीन मेड एवरी कैरेक्टर दैट ही पोर्ट्रेड फील डीपली ऑथेंटिक एंड नॉट जस्ट एन एक्टर. वेल, फारूक शेख वॉज अ मैन ऑफ मेनी टैलेंट्स, इक्वली एट ईज विद थिएटर As he was with films.
बिल्कुल शगुन, और पूनम ढिल्लो के साथ फिल्म नूरी को काफी लोगों ने पसंद किया.
Sure.
एक जमाने में जो फिल्म नूरी थी उसके गाने जो है आज भी लोगों को जिंदा कर देते हैं, तो क्यों ना सुन लेते हैं.
पूछे कौन बता
brought immense depth to this serious role that he played in this serious drama, Noori. And we remember the legend not just for his cinematic contributions, but for the timeless charm he left in all our hearts.
बिल्कुल, और इसके साथ ही वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा. नमस्कार.